ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 23 श्लोक संख्या 20 और 21 लिखा हुआ 21। चत्वारः शूनवः तत्र सतजित् प्रथम आत्मजः महाहयः रेणुयः हैहयः च इति तत्सुताः चत्वारसु नवस्तत्र चत्वारसु नवस्तत्र शतजित् प्रथमात्मजः शतजित् प्रथमात्मजः महाहयो रेणुहयो महाहयो रेणुहयो हयैश्चेति तत्सुता हयैश्चेति तत्सुतास्तत्र सतजित् आत्मजः महाहयो रेणुहयो हयश्चेति तत्सुता चत्वारसु नवस्तत्र प्रथमात्मजा महाहयो रेणुहयो ಸುತ್ರ ಸತಜಿತ್ ಪ್ರಥಮಾತ್ಮಜ ಮಾಯೋರೇನುರಯೋ शब्दार्थ इस प्रकार है, चत्वारः चारों सूनवः पुत्र तत्र वहां शतजित शतजित प्रथमात्मजः पहला पुत्र महाहयः महाहय रेणुयः रेणुहय हाहयः हैहः च तथा इति इस प्रकार तत्सुताः उसके पुत्र। अनुवाद और तात्पर्य है ज्वाइन रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण जो सारे जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में मनुष्य के अपने आदि स्वरूप में यदुकुल में अवतरित हुए। यदु के चार पुत्र थे, सहस्रजित क्रोटा नल तथा रिपु। इन चारों में से सबसे बड़े सहस्रजित के एक पुत्र था जिसका नाम शतजित था। उसके तीन पुत्र हुए, महाहय रेणुहय तथा हय हया। तथा तात्पर्य इस प्रकार है, जैसा कि भगवद्गीता में पुष्ट की गई है या भागवत में पुष्ट की गई है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वमिज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। विद्वान आध्यात्मिकवादी जो परम सत्य को जानते हैं, इस अद्वैत ज्ञान को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान कहते थे। अधिकांश आध्यात्मिकवादी केवल निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा को समझते हैं, क्योंकि भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। भगवान ने भगवद्गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धेत यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्त्वतः। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए उद्योग करता है, और जिनमें जिन्होंने सिद्धि पा ली है उनमें से मनुष्य मुश्किल से एक मुझे समझ पाता है। योगी तथा ज्ञानी अर्थात मायावादी और निराकारवादी परम सत्य को निराकार या अंतर्यामी में समझ सकते हैं। और ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यद्यपि सामान्य पुरुषों से बढ़कर होते हैं, फिर भी वे यह नहीं समझ सकते कि परमेश्वर की तरह एक व्यक्ति हो सकता है, परमेश्वर भी एक व्यक्ति हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि अनेक सिद्धियों में से जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है, कोई एक सिद्ध नर, एक सिद्ध नर रूप कृष्ण को समझ सकता है। स्वयं कृष्ण ने इस मनुष्य रूप की व्याख्या विराट रूप प्रदर्शन करने के बाद की है। विराट रूप आदि रूप नहीं है, उनका आदि रूप है द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर का, जो दो हाथों वाले हैं और मुरली बजा रहे हैं। श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान जो भगवान के स्वरूप अनेक काल्पनीय गुणों के प्रमाण है। यद्यपि भगवान अपने एक श्वास काल में असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, किंतु वे मनुष्य की भांति वेश धारण किए रहते हैं। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे हूबहू मनुष्य है। यह उनका आदि रूप है, लेकिन चूंकि वे मनुष्य की तरह दिखते हैं, अतएव अल्पज्ञ उन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरे उपहास करते हैं, वे मेरे दिव्य प्रकृति एवं मेरे परम ईश्वरत्व को नहीं जानते। भगवान अपने परम भावम अर्थात दिव्य स्वभाव से सारे जीवों के हृदय में स्थित सर्वव्यापी परमात्मा है, फिर भी वे मनुष्य की तरह लगते हैं। मायावादी दर्शन कहता है कि भगवान मूलतः निराकार है, किंतु जब वे अवतरित होते हैं तो मनुष्य तथा अन्य रूप धारण करते हैं, किंतु वस्तुतः वे मूलतः मनुष्य जैसे हैं और निराकार ब्रह्म उनके शरीर की किरणों से युक्त होता है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। ओम ज्ञानानंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वापदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯೇ ಜೋ ಶ್ಲೋಕ ಲಿಖಾ ಹೇ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಊಪರ್ 21ವಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ 21ವಾ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಹಲೆ ಜೋ 20ವಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ಉಸ 20ವಾ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಊಪರ್ ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತಾರ ವರ್ಣನ ಕರ್ತೆ ಹೇ. 20ವಾ ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇ, ಯತ್ರಾವತೀರ್ಣೋ ಭಗವಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ನರಾಕೃತಿ ಯದೋ ಸಹಸ್ರಜಿತ ಕ್ರೋಷ್ಠ ನಲೋ ರಿಪು ಇತಿ ಶ್ರುತಃ. ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ದ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಯದು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜೋ ಸಬ್ಕೆ ಹೃದಯ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ರೂಪೇ ನಿವಾಸ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಔರ್ ವೋ ಅಪ್ನೆ ಜೋ ಮೂಲ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಮೇ ಯದು ಕೆ ವಂಶ ಮೇ ಪ್ರಕಟ ಹುಯೇ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಅಭಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ ಶೀರ್ಷಕ ಹೇ ದ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಯಾತಿ. ಯಯಾತಿ ಕೆ ಜೋ ಪುತ್ರೋ ಕೆ ಜೋ ವಂಶ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಹೇ. ಯಯಾತಿ ಕೆ ಚಾರ್ ಪುತ್ರ ಹುಯೇ, ಉನ್ಮೇ ಸೆ ಯದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನೆ ಗಯೇ. ಹಮ್ನೆ ಯಯಾತಿ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಪಿಛಲೆ ಕುಚ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಹಮ್ನೆ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ ಥಾ, ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ಕೋ ಯುವಾವಸ್ಥಾ ಚಾಹಿಯೇ ಥಾ, ಯುವಾವಸ್ಥಾ ಮಾಂಗನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಉನ್ಕೆ ಚಾರೋ ಪುತ್ರೋಕೆ ಪಾಸ್ ಗಯೇ ತೋ ಯದು ಉನ್ಹೋನೆ ಇನ್ಕಾರ ಕರ್ ದಿಯಾ, ನಹೀ ಮೇ ಅಪ್ನಾ ಯುವಾವಸ್ಥಾ ಕೋ ಆಪ್ಕೋ ನಹೀ ದೂಂಗಾ. ಏಕ್ ಪುತ್ರನೆ ದಿಯಾ ಲೇಕಿನ್ ಯದುನೆ ನಹೀ ದಿಯಾ. ತೋ ಯದುನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ, ಉನ್ಕೆ ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಆಜ್ಞಾ ಕೋ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕಿಯಾ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾನೆ ಜಾತೆ ಪಿತಾಜಿ, ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ಅತಿಥಿ ಯೇ ಸಬ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇ. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ. ಯದುನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ, ಉನ್ನೆ ಉನ್ಕಿ ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಆಜ್ಞಾ ಕೋ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕಿಯಾ. ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಬಿ ಭಾಗವತಂ ಕೆ ಜೋ 10ವಾ ಸ್ಕಂದ ಕಾ ಶುರುವಾತ್ ಮೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸೆ ಪೂಛತೆ ಹೇ ಪ್ರಶ್ನ, ಕಿ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಔರ್ ಸುನ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂ. ಇಸ್ ಪ್ರಶ್ನ ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ್ ಜೋ ಭಾಗವತ್ ಕಾ 10ವಾ ಸ್ಕಂದ ಕಾ ದೂಸರಾ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ವೋ ಕಹತೆ ಹೇ, ಯಜೋಶ್ಚ ಧರ್ಮಶೀಲಸ್ಯ ನಿತರಂ ಮುನಿಸತ್ತಮ ತತ್ರಾಂಶೇಣ ಅವತೀರ್ಣಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ ವೀರ್ಯಾಣೆ ಸ್ಮನ್ನಃ. ಉನ್ನೆ ಕಹಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೋ, ಯಜೋಶ್ಚ ಧರ್ಮಶೀಲಸ್ಯ, ಯದು ಜೋ ಹೇ ಉನ್ನೆ ಉನ್ಕಾ ಉನ್ಕೋ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯ ಧರ್ಮಶೀಲಸ್ಯ, ಉನ್ನೆ ಧರ್ಮ ಕೋ ಪಾಲನ್ ಕಿಯಾ. ವೈಸೆ ದೇಖಾ ಜಾಯೇ ಉನ್ನೆ ಅಪ್ನಿ ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಆಜ್ಞಾ ಕೋ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕಿಯಾ ಥಾ. ಅದೇ ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಆಜ್ಞಾ ಕೋ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕಿಯಾ ತೋ ಯದೋಶ್ಚ ಯದು ಧರ್ಮಶೀಲ ಕೈಸೆ ಹೇ, ಉನ್ನೆ ಧರ್ಮ ಕೋ ಕೈಸೆ ಪಾಲನ್ ಕಿಯಾ. ತಬ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುತಾ ಹೇ, ಭಲೇ ಹಿ ಯದು ನೇ ಉನ್ಕಿ ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಆಜ್ಞಾ ಕೋ ಉನ್ನೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕಿಯಾ, ಲೇಕಿನ್ ವೋ ಏಕ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಹೇ, ಕಿನ್ನೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕೋ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಉನ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಆಜ್ಞಾ ಕೋ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕಿಯಾ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಭಲೇ ಹಿ ಉನ್ನೆ ಏಕ ತರೀಕೆ ಸೆ ಧರ್ಮ ಕೋ ಪಾಲನ್ ನಹೀ ಕಿಯಾ, ಪುತ್ರ ಕಾ ಧರ್ಮ ಕೋ ಪಾಲನ್ ನಹೀ ಕಿಯಾ. ಪುತ್ರ ಕಾ ಧರ್ಮ ಹೋತಾ ಹೇ ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಆಜ್ಞಾ ಕೋ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನಾ, ಭಲೇ ಹಿ ಉನ್ನೆ ಪುತ್ರ ಕಾ ಧರ್ಮ ಕೋ ಪಾಲನ್ ನಹೀ ಕಿಯಾ, ಲೇಕಿನ್ ಕಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಪಾಲನ್ ನಹೀ ಕಿಯಾ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕೋ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಅಕ್ಷುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಉನ್ನೆ ಈ ಧರ್ಮ ಕೋ ಪಾಲನ್ ನಹೀ ಕಿಯಾ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಜೆ ಪರಮಾತ್ಮಿಕ ಧರ್ಮ ಹೇ ಏಕ ಆರ್ಥಿಕ ಧರ್ಮ ಹೇ, ಜೆ ಪರಮಾರ್ಥಿಕ ಧರ್ಮ ಕೋ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಆರ್ಥಿಕ ಧರ್ಮ ರುಕಾವಟ್ ಪಹುಂಚತಾ ಹೇ, ರುಕಾವಟ್ ಹೋತಿ ಹೇ, ತೋ ಉಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಧರ್ಮ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ನಾ ಹಮಾರಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ಧರ್ಮ ಹೋತಾ ಹೇ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲಿಖತೆ ಹೇ, ಹಮಾರಾ ಧರ್ಮ ಹೇ ಸಾರೇ ಧರ್ಮೋಂ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ನಾ. ಕ್ಯೋ? ಕ್ಯೋಂಕಿ ಈ ಜೋ ಸಾರೆ ಧರ್ಮ ಜಿಸ್ಕಾ ವರ್ಣನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಅನೇಕ ಜಗ ಹುವಾ ಹೇ ವೋ ಆರ್ಥಿಕ ಧರ್ಮ ಹೇ, ವೋ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಧರ್ಮ ಹೇ. ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಆರ್ಥಿಕ ಧರ್ಮ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ಗೆ ಪರಮಾರ್ಥಿಕ ಧರ್ಮ ಕೋ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನಾ ಯೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ಧರ್ಮ ಹೇ, ಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನಾ ಗಯಾ ಪರಮಾರ್ಥಿಕ ಧರ್ಮ ಕೋ. ಜಬ್ ತಕ್ ಈ ಪರಮಾರ್ಥಿಕ ಧರ್ಮ ಕೋ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಧರ್ಮ ಸಹಯೋಗ ದೇತಾ ಹೇ, ಜಬ್ ತಕ್ ಸಹಯೋಗ ದೇತಾ ಹೇ ತೋ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಧರ್ಮ ಕೋ ಪಾಲನ್ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಯಾನಿ ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ತರ ಕಾ ಧರ್ಮ, ಮಾನ್ ಲೀಜಿಯೇ ಪಿತಾ ಕಿ ಆಜ್ಞಾ ಕೋ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆ ಸೇ
उनकी भक्ति में रुकावट नहीं हो रहा है तो पिताजी का आज्ञा को पालन करना चाहिए। अगर कोई अन्य स्त्री धर्म हो या पतिव्रता धर्म हो, पति धर्म हो, देश धर्म हो, ये सब पालन करने में अगर हमारी जो वास्तविक परो धर्म है, परमार्थिक धर्म है, उस पर रुकावट पहुंच रहा है तो क्या करना चाहिए, ये आर्थिक धर्म है उसको त्याग कर देना चाहिए। तो कृष्ण यदु से बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए वो यदु वंश में प्रकट हुए। अस्तित्व में यदु वंश में अनेकों अनेकों राजा हुए, लेकिन कृष्ण को क्या जानते हैं हम लोग, यादव के रूप में जानते हैं। हाँ, हे यादव, अर्जुन ने कृष्ण को यादव करके संबोधित किया, यदु के ऊपर आधारित होते हुए यादव। हाँ, अभी भी जानते हैं यदु वंश के हैं कृष्ण। कौन से वंश के हैं? कृष्ण यदु वंश के हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यदु वंश में प्रकट होके सारे वंश को उन्होंने उद्धार कर दिया या उनको पवित्र बना दिया। भले ही देखा जाए यदु वंश में कौन प्रकट हुए, चंद्र भी यदु वंश में आता है, या कृष्ण जो है चंद्र वंश में है। चंद्र का अगर देखेंगे तो कैरेक्टर इतना ठीक नहीं है, वैसे तो उनके चेहरे के ऊपर दाग भी है कि नहीं, और साथ साथ में वो बहुत सारे गड़बड़ कार्य भी करते हैं चंद्र। लेकिन कृष्ण उस चंद्र वंश में प्रकट होके, यदु वंश में प्रकट होके, वो सारे जो भौतिक सत्य कलंक है वो सबको उन्होंने, दोषों को उन्होंने मिटा दिया। ये कृष्ण भावना और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना को स्वीकार करता है, भले ही उनके चरित्र के ऊपर या पहले कोई गलत किया होगा, कोई कुछ पाप किया होगा, या उनके चरित्र में या उनके वंश ठीक नहीं है, या अच्छे परिवार में जन्म नहीं लिया है, या कोई गलत कार्य भी किया होगा पहले, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने मात्र से वो सब शुद्ध हो जाता है, वो सब पवित्र हो जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज 10वें स्कंद के पहला अध्याय के दूसरे श्लोक में और साथ साथ में तीसरे श्लोक में भी यदु का नाम लेते हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं अवतीय यदु वंशे भगवान भूत पावन। पहले श्लोक में उन्होंने कहा यदोस्तु धर्मशीलस्य, भले ही बहरंगी दृष्टिकोण से धर्म को त्याग किया, लेकिन यदु ने क्या किया, धर्मशीलस्य, उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होके भगवान ने क्या किया, अवतीय यदु वंशे, जो इस श्लोक में भी कहा गया है, इसके पहले वाला श्लोक 20वां श्लोक में भी कहा गया, यत्रावतीर्ण भगवान परमात्मा नराकृति यदो हो सह सजित कोष्ठा। यदो हो, यदु के वंश में भगवान प्रकट हुए, इसी बात को परीक्षित महाराज कहते हैं बड़ा भाग्यवान है यदु, भगवान भूत भावना, भगवान को भूत भावना कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि लोगों के हृदय में उनकी प्रति भावना को जागृत करते हैं, इसलिए उनका नाम है भूत भावना। यदो अवतीर्य यदो वंशे भगवान भूत भावना। तो भगवान यदु के वंश में क्यों प्रकट हुए, उसका जवाब देते हुए परीक्षित महाराज कहते हैं लोगों के हृदय में भक्ति की भावना, अपने प्रति भावना को जागृत करने के लिए भगवान प्रकट हुए। तो इसलिए आप वैसे भगवान का जो चरित्र है खाली दो श्लोकों में वर्णन मत कीजिएगा, क्योंकि 10वां स्कंद का शुरुआत होने से पहले 9वां स्कंद में अंत में या अगले अध्याय का आखिरी अध्याय 9वां स्कंद का, उसमें पूरा कृष्ण का जो पूरा लीला है परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने दो श्लोक में सुना दिया था। दो श्लोक में कृष्ण का जन्म हुआ, बाद में मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन गए, लीलाएं किए, कंस को मारे, अर्जुन को उपदेश दिए, और बाद में अपना द्वारका में अनेकों रानियों को उन्होंने विवाह किया और अपने धाम में चले गए। दो श्लोक में पूरा वो कृष्ण का लीला को वर्णन कर दिया। तो परीक्षित महाराज बड़े आतुरता के साथ कहते हैं नहीं नहीं, आप विस्तार से वर्णन कीजिए। तानिन्यो वद विस्तरात। क्यों विस्तार से सुनना चाहते हैं हम लोग? क्योंकि भगवान यदु वंश में प्रकट होके, यदु के कुल में प्रकट होके उन्होंने क्या किया, भगवान भूत भावना, अनेकों अनेकों भक्तों के जीवों के हृदय में उनकी प्रति जो भावना है वो जागृत करने के लिए उन्होंने बहुत लीलाएं की। उनका जो रूप है इतना लावण्यमय रूप है, इसलिए कहा गया है कि स्वमूर्तया लोकलावण्य निराकृतः लोचनम नृणाम, निराकृत्य लोचनम नृणाम, तो भगवान की जो रूप लावण्य इतना सुंदर इतना मधुर है कि सारे लोग या लोगों की जो आंखों की जो प्रवृत्ति है वो सब बंद हो जाता है। आंखों का प्रवृत्ति क्या है? हर चीज को देखना। लेकिन जैसे कोई कृष्ण का दर्शन करता है कि भगवान की लावण्य इतना सुंदर है कि आंख कुछ और को देखने का मन ही नहीं करता है, तो वैसे कृष्ण का जो स्वरूप है वो स्वरूप को आप वर्णन कीजिए और उनकी लीलाओं को वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा प्रत्येक जीव की जो इंद्रिय प्रवृत्ति है वो कहीं और लगे ना। आँख है तो केवल कृष्ण का ही दर्शन करे, और नासिका है तो कृष्ण का ही मधुरता को वो सूंघे। सारे इंद्रियों की जो क्रिया है वो हरने वाले जो कृष्ण हैं उनको आप दो श्लोकों में वर्णन मत करो, उनको आप विस्तार से वर्णन करो। खास करके वो ये जो मनुष्य रूपी है, जैसे भागवत में वर्णन हुआ है लावण्य आकृति ही स्वमूर्तया लोकलावण्य आकृति ही, ये बहुत सुंदर मधुर स्वरूप है। कौन सा है? ये नर रूपी जो स्वरूप है कृष्ण का, ये हम सुनना चाहते और देखना चाहते हैं। तो इसी श्लोक में आज हमने ये देखा, क्या उसके पहले वाला श्लोक लिखा रहना चाहिए था बोर्ड में, यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति। प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में पूरा लंबा चौड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं कि नराकृति ये शब्द के ऊपर, नराकृति परमात्मा नराकृति। इस श्लोक में बहुत थोड़ा दार्शनिक बात ये है, परमात्मा नराकृति ये शब्द के द्वारा कोई ये सोच सकता है कि परमात्मा नर के रूप में है। वैसे भगवान जो है निराकार हैं, लेकिन जब वो परमात्मा के रूप में आते हैं तो वो एक नर का रूप प्रकाशित करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस बात को पूर्ण तरीके से खंडन किया है, वैसा नहीं है। उसका सबूत देते हुए वो भगवद गीता का जो 11वां अध्याय है उसके बारे में वर्णन करते हैं। पहला, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे द्विजबुद रूप में। तब अर्जुन ने व्यक्त किया, हे भगवान मैं देखना चाहता हूँ आपका जो विश्व रूप है, मैं देखना चाहता हूँ। तब कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन ये विश्व रूप को इन आँखों के द्वारा तुम देख नहीं सकते हो, तुमको एक दिव्य चक्षु चाहिए। तब भगवान ने क्या किया, दिव्यं ददामि ते चक्षु, अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया, जिसके द्वारा अर्जुन जो है भगवान का विश्व रूप को उन्होंने दर्शन किया। तब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। क्या प्रश्न है? कि अर्जुन के पास क्या दिव्य चक्षु नहीं था? भगवान को दिव्य चक्षु देना पड़ा कि विश्व रूप को देना देखने के लिए? भगवान अर्जुन जो है वो भगवान के पार्षद होने के नाते क्या उनके पास दिव्य चक्षु नहीं था? वो तो भगवान को दर्शन कर ही रहे थे। तो इधर ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, अर्जुन के पास पहले से ही दिव्य चक्षु था, लेकिन वो ऐसा दिव्य चक्षु था जिसके द्वारा वो कृष्ण की जो द्विभुज रूप को आस्वादन कर सकते थे। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि तुम विश्व रूप का दर्शन करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे पास जो पहले से ही दिव्य चक्षु है उससे जो लोअर ग्रेड का दिव्य चक्षु देता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जानने लायक बात है। लोग सोचते हैं कि भगवान अर्जुन जो है उनके पास वैसे हमारी जैसी आंखें थी और भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिया, लेकिन ये बात गलत है। भगवान ने वैसा एक लोअर ग्रेड का दिव्य चक्षु दिया, एक निम्न स्तर का दिव्य चक्षु दिया, जिसके द्वारा ये विश्व रूप को देख सकते थे अर्जुन। जैसे मान लीजिए कोई सुंदर पुत्र है तो माँ उस सुंदरता को आस्वादन कर रही है, लेकिन वो पुत्र बड़ा होने के बाद कोई बड़ा ऑफिसर बनता है तो माँ उस बच्चे को जितना ही बड़ा ऑफिसर बने कितना ही बड़ा इंजीनियर बने वो बच्चे के रूप में देखती है। तो उनके पास वो प्रेममय चक्षु है, तो उस माँ को ये समझाने के लिए, नहीं 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 आपका पुत्र साधारण नहीं है, वो बहुत बड़ा हो गया है, इतना अमीर हो गया है, ये हो गया, वो बड़ा ऑफिसर है, वो है, तो माँ उसको जानती नहीं है, तो उसके लिए समझाना पड़ता है, नहीं ऐसा ऐसा होता है, तब वो समझती है, यानी वो लोअर ग्रेड का है, लोअर ग्रेड की दृष्टि को धारण करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान ने कहा अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम्हारे पास वैसा सुंदर दिव्य चक्षु है जिसके द्वारा तुम मुझे दर्शन कर रहे हो, नर रूप में दर्शन कर रहे हो। अगर तुम मेरा निम्न रूप को दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए जो तुम्हारे पास जो पहले से दिव्य चक्षु है उससे नहीं होने वाला है, इसलिए मैं निम्न स्तर की रूप के लिए निम्न स्तर की चक्षु देता हूं, क्योंकि भगवान को दर्शन करना है तो दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, लेकिन भगवान का निम्न स्तर का जो रूप है विश्व रूप, उसको दर्शन करने के लिए अर्जुन को क्या देना पड़ा, भगवान को निम्न स्तर की दिव्य चक्षु देना पड़ा। तो अर्जुन ने ये निम्न स्तर की दिव्य चक्षु को धारण किया, भगवान ने उनको विश्व रूप को दिखाया, और जैसे विश्व रूप को दिखाया अर्जुन ने कहा नहीं 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 रूपम दे घोरम, ये बहुत घोर रूप है, बंद करो इसको, मैं देखना नहीं चाहता हूं, तो चतुर्भुज को देखना चाहता हूं। तो विश्व रूप के बाद भगवान ने कृष्ण अर्जुन को चतुर्भुज को दिखाया। जब चतुर्भुज को दिखाया तब अर्जुन ने कहा ये ठीक है, लेकिन फिर भी आप जैसे थे वैसे आ जाओ, भगवद गीता एज इट इज एंड यू बिकम एज इट इज, पहला आपका जो स्वरूप था वो ही ठीक है। तो उस श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त जो है वो भगवान को ये मनुष्य रूप में दर्शन करना चाहता है, यानी मनुष्य रूप में दर्शन करने का अर्थ ये नहीं कि वो मनुष्य बन गए, नहीं, भगवान भले ही कोई भी रूप धारण करे उनकी दिव्यता तो हमेशा रहती है, लेकिन जब मनुष्याकृति, जैसे इधर कहा गया इस 20वां श्लोक में परमात्मा नराकृति, ये नराकृति वाला जो मनुष्य का जो रूप है भगवान का, जैसे भगवान को अनेकों अनेक रूप धारण करते हैं, हाथी का रूप धारण करते हैं, घोड़े का रूप धारण करते हैं, मछली का रूप धारण करते हैं, हाँ नैमिषारण्य में एक जंगल का रूप धारण करते हैं, पहाड़ का रूप धारण करते हैं, क्या क्या रूप धारण नहीं करते, हर प्रकार का रूप धारण करते हैं, लेकिन सारे प्रकार के रूपों में जो नराकृति है वो सर्वश्रेष्ठ है। बाइबल में भी कहा गया है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड का अर्थ क्या है कि मनुष्य जो है भगवान ने क्या किया, उनके ही स्वरूप से अनुसार बनाया। तो भगवान अनेक रूप धारण करते हैं लेकिन अनेकों अनेक रूपों में उनका जो नराकृति है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो नराकृति सर्वश्रेष्ठ होने की वजह से ये यदु को उन्होंने सबसे महान सौभाग्य प्रदान किया, चंद्रवंश यदु वंश को उन्होंने सबसे महान सौभाग्य प्रदान किया। क्या क्या सौभाग्य है, वो सौभाग्य है कि नराकृति वाला जो स्वरूप है यदु वंश में उनका प्राकट हुआ। इसलिए ये जो 20वां श्लोक है उसके पहले वाले श्लोक में कहा गया है, यानी 19वें श्लोक में, कि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वर्णयामि महापुण्याम सर्व पापहरम नृणाम यदो हो वंश नर श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को इन श्लोक में, हे परीक्षित महाराज तुम सुनो कि वर्णयामि महापुण्याम, मैं वर्णन करूंगा, क्या वर्णन करूंगा, सर्व पापहरम नृणाम यदोर वंशाम, यदु के वंश को मैं वर्णन करूंगा या कर रहा हूं। तो परीक्षित महाराज जब बैठे थे तो सुखदेव गोस्वामी इन यदु के वंश के अनेकों अनेकों राजाओं का नाम सुन रहे थे। तो ये वंशों के राजाओं का नाम सुनकर इस तरह कहता, ये क्यों बोल रहे भाई, क्या जरूरत है, इसका पुत्र ये है, इसका पुत्र ये है, इसका पुत्र ये है, उन पुत्रों का नाम लेना भी बहुत मुश्किल होता है या प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल होता है, इतना लंबा चौड़ा, इसका पुत्र है, इसके तीन पुत्र है, ये तीन पुत्र में पहला पुत्र जंगल गया, इसका दूसरा पुत्र का ये हुआ, और ये पुत्र का कोई पुत्र और संतान नहीं था इससे गोद लिया, ये सब चीजें क्यों बोला जा रहा है। तो उस प्रश्न का जवाब देते हुए इस श्लोक में कहा गया वर्णयामि महापुण्याम, ये जानो ये जो राजाओं का नाम लेना भी महापुण्य है, इसलिए मैं इन राजाओं का नाम ले रहा हूं जो यदु के वंश प्रकट हुए। क्यों पुण्याम महापुण्याम सर्व पाप हरम नृणाम, सारे लोगों की पाप को हरने वाली, यानी जो भी व्यक्ति भले ही कृष्ण का ही नहीं, कृष्ण के संबंधित कोई भी व्यक्ति का नाम भी लेता है, भले ही वो विख्यात नाम भी क्यों ना हो, वहां विख्यात नाम भी नहीं है, फिर भी वो नाम लेने से, फॉर एग्जाम्पल एक नाम है, एक जैसे 16वां श्लोक में कहा गया है या 15वां श्लोक में कहा गया है, द सन ऑफ सेतु वॉज आरब्ध, आरब्ध सन वॉज गांधार, गांधार सन वॉज धर्म, धर्म सन वॉज धृता, धृता सन वॉज दुर्मदा एंड दुर्मदा सन वॉज पतिता। अरे इन सब राजाओं का नाम जो है भले ही हमने उच्चारण किया लेकिन इनका चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हमने इन नामों को सुना या उनको पढ़ा, ये पढ़ने से परीक्षित महाराज को कहते सुखदेव गोस्वामी, खाली ये नाम सुनने मात्र से सर्व पाप हरम, सारे पाप हर जाते हैं। क्यों? ये कृष्ण का ये महिमा है। कृष्ण यदुवंश में जन्म लिए, यो इसके जन्म लेने की वजह से यदुवंश का किसी का भी राजा का नाम लो, ये कहते हुए ये यदुवंश में है तो सर्व पाप हरम, पाप को हरण करने वाला है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम तस्मात् प्रतरं देवी तत्तदीयानां समर्चनम्। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। शिवजी पार्वती को कहते हैं कि आराधनानां सर्वेषां, अनेकों अनेकों प्रकार की आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना है विष्णुराराधनं परम, सर्वश्रेष्ठ है, तस्मात् परतरम देवी, लेकिन विष्णु की आराधना से परतरम, उससे परे हैं, क्या है? तत् तदीयानाम समर्चनम। तदीयानाम, तदीय वस्तु का अर्थ ये है कि कृष्ण के सीधे संबंध में जो है उन वस्तुओं का अर्चना करना, उनको पूजा करना, ये और श्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि कृष्ण जो है तदीय वस्तु से प्रेम करते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि इफ यू वॉन्ट लव ए पर्सन, लव इज डॉग। अगर किसी का कुत्ता है और वो इतने से प्रेम करना चाहते हो तो उनके पास जाओ, कितना सुंदर कुत्ता है, ऐसे बोलने लगे वो प्रसन्न हो जाता है, उनको जाके प्रसन्न करो, सोचे कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझे क्यों इतना प्रशंसा कर रहा है। अगर किसी को आप प्रसन्न करना चाहते हो तो उनका जो पुत्र है, बच्चा है, बोलो कितना सुंदर बच्चा है, ऐसा बोलो तो माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं, वाह वाह देखो हमारे पुत्र का प्रशंसा हो रहा है। तो इफ यू वॉन्ट लव मी, लव माई डॉग, दैट इज द प्रिंसिपल। तो तदीयानाम समर्चनम, भले ही कृष्ण का नाम सारे पाप को हरने वाली है, लेकिन कृष्ण का नाम से बढ़कर है उनके साथ संबंधित भक्तों का नाम। भक्तों का भी बात छोड़िए, महाभारत में या भगवद गीता के शुरुआत में भी दुर्योधन अनेकों अनेकों लोगों का नाम लेता है, मेरे पक्ष में ये लोग है और उनके पक्ष में ये लोग है, सभ्यश्च नरपुंगवा अश्वत्थामा विकर्णश्च सौवतस्तथैवचा, अनेकों अनेकों नाम। तो जब उन नामों के ऊपर या उन श्लोकों के प्रभुपाद जी अपने लेक्चर दे रहे थे, तब लेक्चर में प्रभुपाद जी ने इस बात को कहा कि वन शुड नॉट थिंक, ये मैं सोचना चाहिए कि इन सब लोगों का नाम ऐसा क्यों बोला जा रहा है भगवद गीता में, क्योंकि इन सब नामों का संबंध कृष्ण से है, चाहे दुश्मन के रूप में भी क्यों ना हो संबंध कृष्ण के साथ में है, क्योंकि भगवद गीता में उनका नाम है, भगवद गीता में उनके नाम होने की वजह से वो नाम लेना भी हमको हमारी शुद्धिकरण के लिए। और प्रभुपाद जी उधर एक श्लोक कोट करते हैं कि अनासक्तस्य विषयान यथारोपयुञ्जतः मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फलुकथ्यते, प्रापंचिकतया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फलुकथ्यते। हरिसंबंधी वस्तुना, ये सब जितने भी नाम भगवदगीता की शुरुआत में हो या इस अध्याय में नौवें स्कंद में जो यदु के वंश के जो राजाओं का नाम, हरि संबंधी भगवान के संबंध में होने के वजह से, अगर कोई सोचता है परित्यागो क्या पढ़ने गए सब, जैसे भगवदगीता का ये भागवतम का नौवां स्कंद शुरू करेंगे, नौवां स्कंद का जो खास करके ये अध्याय में पूरा सबसे 21st श्लोक के ऊपर व्याख्या चल रही है, प्रभुपाद जी ने कोई और श्लोक के ऊपर उन्हें व्याख्या नहीं किया है, तो कोई सोचे इसका पुत्री है, इसका पुत्री है, इसका पुत्री है, ये सब पढ़ने के क्या, चलो आगे चलो 10वां स्कंद में चले जाएंगे। थोड़ा जल्दबाजी करता है तो गलत कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे जितने भी नाम ये जो अध्याय में या वंशानुचरित वंशावली यदु का वंशावली, इन राजाओं का नाम लेना भी जगत पवित्रम है या लोगों को पापों करने वाली, इसलिए कहा गया यदुर्वंशम नरश्रुत्वा श्रुत्वा, यदु वंश के जो राजाओं के नाम को श्रुत्वा सुनने के द्वारा क्या होगा, सर्व पाप प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो सकता है, सर्व पाप प्रमुच्यते। तो इसलिए इन यदु वंश के जो राजा हैं उन लोगों का नाम लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहला इस इन यदु वंश के राजाओं का नाम लेने की महिमा को वर्णन करने के बाद हम ये जो अध्याय का पहला श्लोक से सारे लोगों का नाम लेंगे, नहीं तो सोचेंगे क्या नाम लिए जा रहे इधर इन लोगों का, इसका पुत्र है, इसका पुत्र है, इसका पुत्र है। तभी देखते हैं कि 23वां अध्याय का पहला श्लोक से, क्योंकि पूरा 23वां अध्याय में कोई भी श्लोक को लिया नहीं गया है, तो 23वां अध्याय का पहला श्लोक से यदु के या ययाति के चार पुत्र हुए, उन चार पुत्रों में एक एक पुत्र का वंश का वर्णन हो रहा है। तो सबसे पहला श्लोक में वर्णन किया गया सुखदेव गोस्वामी सेड, सुखदेव गोस्वामी, ये सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि अनु जो ययाति के चौथे पुत्र है उनके तीन पुत्र हुए, उनका नाम था सबार्ण चक्षु और परुष्णु, और सभार्ण सभानर उनका एक पुत्र हुआ कालानर, और कालानर से उनका एक पुत्र हुआ उनका नाम है श्री जया, और श्रृंजय का एक पुत्र हुए जिनका नाम है जन्मेजय, और जन्मेजय से महाशाल प्रकट हुए, और महाशाल से महामना प्रकट हुए, और महामन के दो पुत्र हुए उनका नाम है उशीनरा और तीतुक्षा, और जो उशीनर को चार पुत्र हुए उनका नाम है शिभि वरा कृमि और दक्षा, और शिभि के और चार पुत्र हुए उनका नाम हुआ विषाभद्र सुधीर मदार और आत्म तत्वित के कैया, और तितुक्ष के पुत्र हुए ऋषद्रता, और ऋषद्रत से होम प्रकट हुआ, होम से सुतपा और सुतपा से बलि प्रकट हुए, और दीर्घतात्मा बलि के पत्नी से छह पुत्रों को उन्होंने प्रकट किया, उनका नाम है अंगा वंगा कलिंगा शुम्ना पुंडरा और ओधरा, और ये जो छह पुत्र हैं अंग के नेतृत्व में भरतवर्ष के पूर्वी छह राज्यों के ऊपर नेतृत्व किया, और उनका नाम भी उस प्रकार पड़ा जैसे आप जानते हैं कलिंग राजा है, अंग है, वंग है, ये सब अलग अलग राज्य है, इन सब राजाओं के नाम के ऊपर आधारित होकर हुआ। अंग के पुत्र हुआ कलापान, और कलापान के पुत्र हुए दिविरथ, दिविरथ के एक पुत्र हुए जिसका नाम था धर्मरथ, एंड उनका पुत्र था चित्ररथ, और उनसे रोबाल प्रकट हुए, रोबाल को कोई पुत्र नहीं था इसलिए महाराज दशरथ के पुत्री शांता को उन्होंने गोद लिया, रोपाद जो है शांता की विवाह कराया ऋषिश सिंह से, और ऋषिश सिंह के वजह से भगवान रामचंद्र का प्राकट्य हुआ, दशरथ के जो चार पुत्र है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऋषिश सिंह के वजह से उन्होंने यज्ञ किया, वो सब आपको रामायण में हमको मालूम पड़ता है कि किस प्रकार रोपाद जो है वो उनका ऋषि सिंह के कृपा से वो उनके राज्य में बारिश हुआ, और ये सब उनका प्रकट हुआ। और ऋषिशृंग और शांता जो दशरथ की पुत्री हैं या रामचंद्र की बहन हैं, उनके एक पुत्र हुए जिसका नाम था चतुररंगा, और चतुररंग के पुत्र हुए पृथुलाक्ष, और पृथुलाक्ष के तीन पुत्र हुए जिनका नाम है बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु। और बृहद्रथ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम है बृहन्माना, और बृहन्माना से पुत्र हुआ जयद्रथ, और जयद्रथ उनकी पत्नी संभूति से विजया, और विजय से धृति प्रकट हुए, धृति से धृतव्रत प्रकट हुआ, व्रतव्रत से सत्कर्मा, और सत्कर्म से अधिरथ, ये सब प्रकट हुए। एक बार गंगा के तट में अधिरथ ने एक पुत्र को प्राप्त किया, एक छोटा सा शिशु था जो कुंती देवी के द्वारा छोड़ी गई है, जिसके द्वारा जिनका आगे नाम पड़ा कर्ण, और कर्ण का एक ही पुत्र था जिनका नाम था वृषसेना। ध्रुयु ययाति के जो तीसरे पुत्र हैं उनका एक पुत्र हुआ बभ्रू, और बभ्रू के पुत्र हुआ सेतु, सेतु के पुत्र हुआ आरब्ध, आरब्ध के पुत्र हुआ गांधार, और गांधार के पुत्र धर्म, और धर्म जो है वो धृत, उनका पुत्र हुए धृत के पुत्र हुआ दुर्मदा, और दुर्मद के पुत्र है प्रचेता, और प्रचेता जो है उत्तरी भारत में आए, उत्तरी भारत में आके जहाँ पूरा वैदिक सभ्यता नष्ट हो गया था, प्रचेताओं ने उत्तरी भारत के ऊपर राजत्व किया और वैदिक सभ्यता को वापस स्थापना किया, और प्रचेताओं के और 100 पुत्र थे। हाँ, प्रचेता याति के जो दूसरा पुत्र है तुर्वसु, और तुर्वसु से वहनी, और वहनी से भर्गा, और भर्गा से भानुमान, इन सब पुत्रों इन सब राजाओं का जन्म हुआ। भानुमान का पुत्र है त्रिभानु, और उनका पुत्र हुआ कर्णधामा, कर्णधार के पुत्र हुआ मरुता, और मरुत के कोई पुत्र नहीं होने की वजह से उन्होंने पुरु राजा के जो दुष्मता है उनको स्वीकार किया पुत्र के रूप में। दुष्मंता वो वापस राजा बनने के चक्कर में फिर वापस पुरु के वंश में चले गए। और महाराज परीक्षित, मैं अभी आपको यदुवंश के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, जो महाराज ययाति के पुत्र हुए या ज्येष्ठ पुत्र हुए ययाति, ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु। जो व्यक्ति इन राजाओं का ययाति के वंशों को या सुनता है वो निश्चित रूप में वो सारे पापों से मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार हमने ययाति राजा के जो 4 पुत्र हैं उन 4 पुत्रों के अलग अलग वंश को हमने चर्चा किया। तो सार रूप में बात यह है कि कृष्ण के संबंध में कोई भी आता है वो पवित्र हो जाता है। एनी बडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कृष्ण बिकम्स प्यूरिफाइड, चाहे असुर क्यों ना हो, चाहे वो सरल भक्त क्यों ना हो, शुद्धिकरण करना कृष्ण का कार्य है। तो कृष्ण में और कृष्ण भक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं होने की वजह से कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति के संपर्क में आता है तो उनका पूर्व इतिहास देखना नहीं चाहिए, वो क्या था क्या है कुछ नहीं, क्योंकि वो पवित्र हो जाता है। ही बिकम्स प्यूरिफाइड बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कृष्णा। तो ये सब जितने भी राजाओं का नाम ने लिया जो कभी कभी उच्चारण करना भी मुश्किल हो जाता है, तो ये पुराण का स्वभाव है। पुराणम पंचलक्षणम, साधारण पुराण होता है उसका 5 लक्षण होते हैं, लेकिन जो महापुराण होता है उसका 10 लक्षण होते हैं। जैसे भागवतम जो है महापुराण होने के नाते 10 लक्षण है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणोतया मन्वंतरेशानुकता निरोधो मुक्तिराश्रय। मन्वंतर ईशानुकता, ईशानुकता ये भगवान के लीलाओं को वर्णन करने वाला है, जो कथा है उसको ईशानुकता कहा गया है। लेकिन भगवान का लीलाओं को वर्णन करना, इसका अर्थ क्या है? भगवान जिस वंश में जन्म लिए उन वंश में आया हुए आए हुए राजाओं का ही वर्णन करना, इसलिए वंशानुचरितम कहा जाता है। ये पुराणों की शैली है। सूर्यवंश और चंद्रवंश, इनमें से आए हुए सारे राजाओं का लिस्ट बताना, इसका पुत्र ये है, इसका पुत्र ये है, और जहाँ जहाँ जिन राजाओं का वर्णन बहुत विस्तार से करना होता है तो उसके लिए अलग ग्रंथ रचना किया जाता है जिसका नाम है इतिहास। पुराण में और इतिहास में यही अंतर है। पुराणों में सारे राजाओं का लिस्ट दिया जाता है, लेकिन इतिहास में जो है उन राजाओं में कोई बड़े, इतने बड़े राजा हुए, इतने अच्छे भक्त हुए या स्वयं भगवान प्रकट हुए, तो उनका विशेष तरीके से वर्णन करने के लिए एक और ग्रंथ का रचना किया जाता है, वो है उसका नाम है इतिहास। जैसे चंद्रवंश में या सूर्यवंश में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, खाली दो तीन अध्याय में भगवान रामचंद्र का चरित्र को वर्णन करना वो ठीक नहीं, उचित नहीं है, तो उनको विस्तार से वर्णन करना होगा, इसलिए रामायण की रचना की गई है। इसलिए रामायण को इतिहास कहा गया है। वैसे तो एक पुराण है रामायण, लेकिन एक राजा का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है इसलिए उसका नाम पड़ा इतिहास। और जैसे उस रामायण इतिहास में कोई एक विशेष घटना को अलंकृत भाषा में वर्णन जब किया जाता है, अनेकों अनेकों उपमा के द्वारा, अनेकों अनेकों प्रकार के अनेक प्रसंगों को मिला के जब उसका वर्णन किया जाता है, उसको काव्य कहा जाता है। ये वैदिक साहित्य की प्रस्तुतिकरण की शैली है। इसलिए कभी भी हमको जब वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, कभी विचलित नहीं होना चाहिए। चलो सीधा चलो कृष्ण लीलाओं को पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी मक्खन चोरी का लीला पढ़ेंगे, रास लीला पढ़ेंगे, नहीं। ये सब राजाओं का नाम लेना ये हमारी दसवां स्कंध में प्रवेश करने की एक तैयारी है, ये समझना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? हाँ पुराणम पंचलक्षणम, ये सर्ग है, सृष्टि, हेतु, मतलब ये किस प्रकार पूरा जगत चल रहा है, और वंशानुचरितम, अलग राजा चंद्रवंश सूर्यवंश राजा, मन्वंतरा मुक्ति, ये पांच है। ऐसा एक श्लोक है, मैं भूल गया वो, लेकिन वो पांच जो है वो भागवतम के सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम होती मन्वंतरे ईशानुकता निरोध मुक्तिराश्रय, दस में से पांच है। लेकिन अन्य पुराणों में आश्रय तत्व का वर्णन ज्यादा आपको प्राप्त नहीं होता है। स्पेशलिटी भागवतम का ये है कि आश्रय तत्व दसमश्च विशुद्धतम नवानाम विलक्षण वर्णयति महात्मा श्रुतेन अर्थेन चांदसा, ये आश्रय तत्व है कृष्ण, उनका वर्णन पूर्ण तरीके से स्पष्ट रूप में विस्तार से प्रत्येक शब्द में वो पुराण अन्य पुराणों में प्राप्त नहीं होता है। ये बराबर बराबर हाँ उनका प्रश्न ये है कि अर्जुन ने तो कृष्ण के साथ जो मित्रता का जो संबंध है वो पहले ही त्याग कर चुके थे, वो शिष्य बन चुके थे, तो फिर भी अर्जुन कितना भी कुछ भी मित्रता को त्यागे लेकिन है मित्र, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनका पार्षद है, अर्जुन के पार्षद है, तो वो पार्षद का जो स्वभाव है, जैसे यशोदा माँ कृष्ण की माँ है, वो कुछ भी करे उनका मातृत्व को त्याग नहीं कर सकती है, हो सकता है कोई सम्मोहिनी शक्ति के द्वारा मोहित हो जाए, सोचे कि कौन है, कोई देवता है क्या मेरा पुत्र, कभी सोचती है यशोदा, लेकिन बाद में सोचती है मेरा ब्रह्म है कि नहीं। लेकिन उनकी जो मातृत्व है वो कभी उसका वो जाता नहीं, इट विल नेवर गो, क्योंकि वो पार्षद है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ यशोदा। तो वैसे ही अर्जुन का मित्रत्व कभी जाता नहीं, लेकिन भगवान की जो मोह या लोगों को भगवद्गीता का उपदेश देना है तो किसके माध्यम से देंगे, उनके पार्षदों के माध्यम से ही देंगे। तो अर्जुन को उस समय उस प्रकार की मोह में डाला गया था योग माया योजना की वजह से, तब अर्जुन इस प्रकार का पूरा ड्रामा किया। अस्तित्व में जो भगवद्गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच में वो सब ड्रामा किसके लिए, हमारे लिए। अर्जुन उन्होंने एक रोल स्वीकार किया भगवान की योजना से ताकि हमको भगवद्गीता मिले, क्योंकि ये भगवान कभी भी अपने लीलाओं में बद्ध जीवों को शामिल नहीं करते जब तक पूर्ण तरीके से 100% शुद्ध ना हो। तो अगर शिक्षा देना है तो अज्ञानी को दिया जा सकता है, तो भगवान तो बद्ध जीवों को तो लीला में नहीं लेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसलिए उनके ही पार्षद को एक बनाते, एक मुद्दा बनाएंगे, चलो तुम ये रोल करो। वो कौन, ये सब आयोजन करने वाला है कौन है, योग माया, योग माया का शक्ति है। तो श्रीपाद आचार्यगण इसके योग माया की अलग अलग प्रकार की शक्तियों को वर्णन करते हैं, सम्मोहिनी शक्ति है, वो शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति है, ये सब कार्य करता है बैकग्राउंड में कृष्ण लीलाओं को अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए। ठीक है, हाँ लास्ट बराबर। इसलिए प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो 11वां अध्याय है ये एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं, दिस इज नॉट फॉर डिवोटीज। 11th चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज नॉट फॉर डिवोटीज, इट इज ओनली फॉर नॉन डिवोटीज टू प्रूव दैट कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जो भक्त होते हैं भविष्य में आके कोई पूछेंगे क्या कृष्ण भगवान कैसे हैं, तो उनके मन में भौतिक कंसेप्ट है, दे ओनली हैव मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट। तो उन लोगों को ये बताने के लिए अच्छा कृष्ण भगवान है क्यों, विश्वरूप जी का, अच्छा बराबर बराबर। वैसे भक्तों का वह विश्वरूप को देखने में कोई रुचि नहीं रहता, तो अर्जुन को मालूम था कि आगे आके कोई ना कोई ऐसा पूछेगा, तो उन लोगों को समझाने के लिए उन्होंने कृष्ण को कहा आप जरा दिखा दीजिए विश्व, उनको दिखा दो, वैसे मुझे देखना नहीं है लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि लोगों को दिखाना चाहता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए। जो भक्त होता है कृष्ण को तो वैसे ही स्वीकार करता है भगवान के रूप में, तो लेकिन जो स्वीकार नहीं करते उन लोगों के लिए कुछ ना चाहिए, तो इसलिए भगवान ने कहा ठीक है वो भी दे देता हूँ। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्लोक प्रभुपाद की चाय। हाँ।